मूसा के पीछे उसकी कौम के लोगों ने अपने जेवरों से एक बछड़े का पुतला बना लिया जिसमें से बैल की सी आवाज निकलती थी। यहाँ आप देखें, चूंकि दिल में बछड़ा ही बसा हुआ था तो वो बाहर आकर रहा। खुदा करे कि हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत बस जाए। क्या उन्हें नजर ना आता था कि वो ना इनसे बोलता है ना किसी मामले में इनकी रहनुमाई करता है, मगर फिर भी उन्होंने इसे माबूद बना लिया और वो सख्त जालिम थे। फिर जब उनकी फरेब खुर्दगी का तिलिस्म टूट गया और उन्होंने देख लिया कि दर हकीकत वो गुमराह हो गए हैं, तो कहने लगे, अगर हमारे रब ने हम पर रहम ना फरमाया और हमसे दरगुजर ना किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। इससे पता चला कि ऐसा गुनाह जिस पे अल्लाह का गजब भड़कता है, जिस पे अल्लाह ने कहा है मैं हरगिज माफ नहीं करूंगा, मगर इस दुनिया की जिंदगी में अगर माफी मांग ली जाए तो अल्लाह ताला दरगुजर करते हैं। उधर से मूसा गुस्से और रंज में भरा हुआ अपने कौम की तरफ पलटा। ये गुस्सा और अफसोस, अहले इल्म कहते हैं कि शदीद गुस्सा और अफसोस एक ही चीज की दो हालतें हैं। कमजोर पर गुस्सा आता है और ताकतवर पर अफसोस होता है। अपनी कौम की तरफ पलटे आते ही उन्होंने कहा कि बहुत बुरी जानशीनी की तुम लोगों ने मेरे बाद, क्या तुमसे इतना सब्र न हुआ कि अपने रब के हुक्म का इंतजार कर लेते? और तख्तियां फेंक दी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुनी हुई बात आंखों से देखने की तरह नहीं होती। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने मूसा अलैहिस्सलाम को इसकी खबर दी जो इनकी कौम ने बछड़े के मामले में किया था, मगर उन्होंने तख्तियां नहीं फेंकी। लेकिन जब आंखों से देखा जो कुछ उन्होंने किया था तो तख्तियां फेंक दी। ये मसनद अहमद की रिवायत है। तो वाकई जो बात आंखों के सामने हो उसके ऊपर कैफियत कुछ और होती है, और जो गैर मौजूदगी में हो और पता चले तो उसकी कैफियत कुछ और होती है। और अपने भाई हारून के सर के बाल पकड़कर उसे खींचा। हारून ने कहा है मेरी माँ के बेटे, इन लोगों ने मुझे दबा लिया और करीब था कि मुझे मार डालते। परसों दुश्मनों को मुझ पर हंसने का मौका ना दे और इस जालिम गिरोह के साथ मुझे शामिल ना कर। हजरत मूसा को गुस्सा आया, मगर किस बात पर कि अल्लाह की नाफरमानी क्यों हुई? तो हमें गुस्सा किस पर आता है जब मेरी बात नहीं मानी जाती? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन जहदिल बलाई व दरकिश शिकाई व सूइल क़ज़ाई व शमातिल आदा। बुखारी में यह दुआ दर्ज है कि अल्लाह ताला हम मुसीबतों की सख्ती से और बदबख्ती से और बुरी तकदीर से और दुश्मनों के हंसने से परवरदिगार तेरी पनाह चाहते हैं। और हम देखें कि दुश्मन खुश कब होता है? जब भाई भाई से लड़ता है। जब मुसलमान मुसलमान से लड़ता है तो दुश्मन खुश होता है। और ज़िमनन ये भी हम जान लें, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में है कि अपने भाई की मुसीबत पर खुश ना हो कि अल्लाह इससे वो मुसीबत हटा ले और तुम्हें इसमें मुब्तला कर दे। यानी दुश्मन तो हंसे, मगर मैं और आप, हमारा ये किरदार ना हो कि हम अपने ही भाइयों पर, अपने ही मुसलमान भाइयों पर हंसे। अल्लाह ना करे कि ऐसे हो। तब मूसा ने कहा, ऐ रब, मुझे और मेरे भाई को माफ कर और हमें अपनी रहमत में दाखिल फरमा, तू सबसे बढ़कर रहीम है। यहाँ दुआ का अदब भी पता चल रहा है कि सबसे पहले दुआ में अपने लिए दुआ मांगिए। ये ना हम कहें कि अच्छा फलां को माफ कर दे, फलां को हदायत दे दे। सबसे पहले अपने लिए, अल्लाह मुझे माफ कर दे और फलां को भी माफ कर दे, अल्लाह मुझे भी हदायत दे और फलां को भी हदायत दे। तिर्मिजी की रिवायत में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी का जिक्र करते और इसके लिए दुआ करते तो पहले अपने लिए दुआ फरमाते। तो यहाँ अपने लिए भी दुआ कि अगर मुझसे कोताही हुई है तो परवरदिगार मुझे माफ कर दे, और अगर मेरे भाई से कोई कोताही हुई है तो परवरदिगार मेरे भाई को भी माफ कर दे। रब्बि अग़फिरली वली अखी व अदखिलना फी रहमतिक व अंत अरहमुर राहिमीन। हम सारी बहनें ही हैं तो क्यों ना अपने भाइयों के लिए ये दुआ करें, रब्बि अग़फिरली वली अखी व अदखिलना फी रहमतिक व अंत अरहमुर राहिमीन। जवाब में इरशाद हुआ कि जिन लोगों ने बछड़े को माबूद बनाया वो जरूर अपने रब के गजब में गिरफ्तार होंगे और दुनिया की जिंदगी में जलील होंगे, और झूठ घड़ने वालों को हम ऐसी ही सजा देते हैं। और जो लोग बुरे अमल करें फिर तौबा कर लें और ईमान ले आए तो यकीनन इस तौबा और ईमान के बाद तेरा रब दरगुजर और रहम फरमाने वाला है। यानी किसी के गुनाह उसकी रहमत को आजिज नहीं कर सकते। अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बलहू, गुनाह से तौबा करने वाला तो ऐसा है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही ना हो। फिर जब मूसा का गुस्सा ठंडा हुआ, इससे पता चलता है कि गुस्सा आना खतरनाक नहीं, गुस्से का ठहर जाना खतरनाक है। हमारा मिजाज ऐसा ना हो कि बात बात पर गुस्सा करें और अल्लाह की नाफरमानी के काम पर जिस पर गुस्सा आना चाहिए उस पर गुस्सा आए, उस पर गुस्सा करने वाले हों। तो उसने वो तख्तियां उठा ली जिसकी तहरीर में हदायत और रहमत थी। अल्लाह का कलाम हदायत और रहमत होता है। इब्तदा में वो हदायत यानी दुनिया की जिंदगी के लिए वो हदायत है, रहनुमाई है, रोशनी है, रास्ता दिखाता है, और आखरत के एतबार से, इंजाम के एतबार से रहमत, अल्लाह की रजा और उसकी जन्नत का मुस्तहिक बनाता है उन लोगों के लिए जो अपने रब से डरते हैं। और उसने अपनी कौम के 70 आदमियों को मुंतखब किया ताकि वो उसके साथ हमारे मुकर्रर किए हुए वक्त पर हाजिर हों। जब इन लोगों को एक सख्त जलजले ने आ पकड़ा तो मूसा ने अर्ज किया है, मेरे सरकार, आप चाहते तो पहले ही इनको और मुझे हलाक कर सकते थे। क्या आप उस कसूर में जो हम में से चंद नादानों ने किया था हम सबको हलाक कर देंगे? ये तो आपकी डाली हुई एक आजमाइश थी जिसके जरिए से आप जिसे चाहते हैं गुमराही में मुब्तला करते हैं और जिसे चाहते हैं हदायत बख्श देते हैं। हमारे सरपरस्त तो आप ही हैं। अंत वलीयुना फ़ग़फ़िर लना वरहमना वअंत खैरुल गाफिरीन। बहुत खूबसूरत दुआ है हजरत मूसा की, बस हमें माफ कर दीजिए, हम पर रहम फरमाइए, आप सबसे बढ़कर माफ फरमाने वाले हैं। और हमारे लिए इस दुनिया की भलाई भी लिख दीजिए और आखरत की भी, हमने आपकी तरफ रुजू कर लिया। वक्तुब लना फी हाज़िहि दुनिया हसनतन व फिल आखिरति इन्ना हुदना इलैक। हम आप ही की तरफ रुजू करते हैं। जवाब में इरशाद हुआ, सजा तो मैं जिसे चाहता हूँ देता हूँ, मगर मेरी रहमत मेरी हर चीज पर छाई हुई है। व रहमती वसियत कुल्ला शय, मेरी रहमत हर चीज को घेरे में लिए हुए है। और इसे मैं उस लोगों के हक में लिखूंगा, फसअक तुबुहा लिल्लदीन यत्तकून। यहाँ गौर कीजिएगा, ये रहमत मिलेगी किसे? जो तकवा इख्तियार करेंगे, जो नाफरमानी से परहेज करेंगे। वो यूतून अज़्ज़कात, जो ज़कात देंगे। वो लदीना हुम बि आयातिना युमिनून, और जो मेरी आयात पर ईमान लाएंगे। यानी सिर्फ ज़कात देते रहें और रब की नाफरमानियां खूब खूब करें, रब के हुक्मों को पसे पुश डालें, तो ये ज़कात हमें बुरे अंजाम से नहीं बचा सकती। इस्लाम पूरे पैकेज का नाम है, इस पूरे पैकेज को लेना होगा। नाफरमानियों से बचना है, अल्लाह के हुक्मों को मानना है, और ये सबूत देना है कि हम परवरदिगार तुझ पर ईमान रखते हैं। और रब की रहमत को कभी महदूद ना कीजिए। अबू हुरैरा बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल नमाज के लिए खड़े हुए और हम भी आपके साथ खड़े हुए। इस असना में एक एराबी ने नमाज की हालत में कह दिया, ए अल्लाह, मुझ पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहम फरमा और हमारे साथ किसी और पर रहम ना फरमा। जब अल्लाह के रसूल ने सलाम फेरा तो उस एराबी से फरमाया, तूने अल्लाह की रहमत को महदूद कर दिया। तो सो अल्लाह की रहमत को महदूद ना करने वाले हों। अगर अल्लाह की रहमत दुनिया में सिर्फ नेक लोगों के लिए होती और कुफर पर और नाफरमानी पर अल्लाह फौरन पकड़ता, तो इस जमीन पर मैं और आप चल ना रहे होते। बस आज ये रहमत उन लोगों का हिस्सा है जो इस पैगंबर नबी उम्मी की पैरवी इख्तियार करें, जिसका जिक्र उन्हें अपने यहाँ तौरात और इंजील में लिखा हुआ मिलता है। वो इन्हें नेकी का हुक्म देता है, बदी से रोकता है, इनके लिए पाकीजा चीजें हलाल और नापाक चीजें हराम करता है, और इन पर से वो बोझ उतारता है जो इन पर लदे हुए थे, और वो बंदिशें खोलता है जिनमें वो जकड़े हुए थे। हमारा दीन आसानी का दीन है, अद्दीन युस्र। और प्यारे नबी ये भी फरमाया करते थे, यस्सिरू वला तुअस्सिरू, आसानियां पैदा करो और तंगी पैदा ना करो। प्यारे नबी ने तो इस कदर आसानी फरमाई, प्यारे नबी फरमाते हैं, अगर मुझे अपनी उम्मत की मुशक्कत का ख्याल ना होता तो मैं इन्हें हर नमाज के लिए मसवाक करने का हुक्म देता, लेकिन आपने ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया। इस शरीयत की कदर करने वाले हों, ये शरीयत हमारी जिंदगी में आसानियां लाती है। लिहाजा जो लोग इस पर ईमान लाए और इसकी हमायत और नुसरत करें, किसकी? अल्लाह के नबी, फल्लदीन आमनू बिही, जो उसके नबी पर ईमान लाते हैं और उनकी हमायत करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, ताजीम करते हैं। अज़रूहू में ताजीम भी शामिल है, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। इमाम मालिक के बारे में आता है कि एक बार आप दरसे हदीस के दौरान बिच्छू ने आपको कई बार काटा और दर्द की वजह से आपके चेहरे का रंग बदल जाता, लेकिन आपने उस वक्त तक पहलू ना बदला जब तक कि हदीस खत्म ना हुई। तो ये एहतराम, प्यारे नबी की बातों का एहतराम, आपका एहतराम, जब आपका नाम आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कहते थे मेरी जान आप पर कुर्बान, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। मोहब्बत भी करें, हिमायत भी करें, मदद भी करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद हम कैसे करेंगे कि जो आपका गम था उसे अपना गम बना ले, जो आपका मिशन था उसे अपना मिशन बना ले, और उस रोशनी की पैरवी अख्तियार करें जो उसके साथ नाजिल की गई है, वही फलाह पाने वाले हैं। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहो कि इंसानों, मैं तुम सब की तरफ उस खुदा का पैगंबर हूँ जो जमीन और आसमानों की बादशाही का मालिक है। उसके सिवा कोई खुदा नहीं, वही जिंदगी बख्शता है और वही मौत देता है। बस ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके भेजे हुए नबी उम्मी पर, जो अल्लाह और उसके इरशादात को मानता है, और पैरवी अख्तियार करो उसकी। उम्मीद है कि तुम राह रास्त पालोगे। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में एक ग्रोह ऐसा भी था जो हक के मुताबिक हदायत करता और हक ही के मुताबिक इंसाफ करता था, और हमने इसकी कौम को 12 घरानों में तकसीम करके इन्हें मुस्तकिल ग्रोहों की शक्ल दे दी थी। और जब मूसा से उसकी कौम ने पानी मांगा तो हमने इसको इशारा किया कि फलां चट्टान पर अपनी लाठी मारो। चुनाचे इस चट्टान से यकायक 12 चश्मे फूट निकले और हर ग्रोह ने अपनी पानी लेने की जगह मुतय्यन कर ली। अल्लाह ताला लाठी मारने के अलावा भी खुद ही पानी निकाल सकते थे, लेकिन हजरत मूसा को हुक्म दिया कि लाठी मारो, यानी इंसान अपनी कोशिश करे, अपनी मेहनतें लाकर डाल दे, और अल्लाह ताला फिर उन मेहनतों में बरकत डालने वाले हैं। और ये भी कि लीडर जो है वो काम करता है और अवाम जो है वो फायदा हासिल करती है। हमने उन पर बादल का साया किया और उन पर मन्नो सलवा उतारा। कितनी नेमतें, सहरा में बादल का साया होना और पका पकाया खाना मिलना, अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत थी। और यहाँ हम देख रहे हैं कि गुनाहों के बावजूद इनामात की बारिश, ये अल्लाह ताला नेमतें देखकर आजमाते हैं कि बंदे मेरी तरफ पलटते हैं या नहीं। खाओ वो पाक चीजें जो हमने तुमको बख्शी हैं, मगर इसके बाद उन्होंने जो कुछ किया तो हम पर जुल्म नहीं किया बल्कि अपने आप ही पर जुल्म करते रहे। याद करो वो वक्त जब उनसे कहा गया कि इस बस्ती में जाकर बस जाओ और इसकी पैदावार से अपने हसबे मनशा रोजी हासिल करो, और हित्ततुन हित्ततुन कहते जाओ। क्या मतलब है हित्ततुन का? कि रब्बे अग़फिर ली, ए हमारे परवरदिगार तो हमें माफ कर दे, और शहर के दरवाजे में सजदा रेज होते हुए दाखिल हो तो हम तुम्हारी खताएं माफ करेंगे और नेक रवैया रखने वालों को मजीद फजल से नवाजेंगे। इन दो चीजें चाहिए, अल्लाह से माफी के लिए आजी और इस्तगफार, रब के हुक्मों के आगे झुक जाना और अल्लाह से अपनी कोताहियों की माफी मांगना, ये मतलूब है। मगर जो लोग उनमें से जालिम थे, उन्होंने उस बात को जो उनसे कही गई थी बदल डाला। हित्ततुन की बजाय हिंततुन, गंदुम का दाना कहने लगे, और नतीजा ये हुआ हमने उनके जुल्म की पादाश में उन पर आसमान से अजाब भेज दिया। या अल्लाह तो हमें माफ फरमा दे। और जरा इनसे उस बस्ती का हाल भी पूछो जो समुन्दर के किनारे वाकई थी। इन्हें याद दिलाओ वो वाकया कि वहां के लोग सब्त यानी हफ्ते के दिन अहकाम इलाही की खिलाफ वर्जी करते थे, और ये कि मछलियां सब्त ही के दिन उभर उभर कर सामने सतह पर आती थी और सब्त के सिवा बाकी दिनों में नहीं आती थी। यहाँ बनी इसराइल की उस बस्ती का जिक्र जिसको अल्लाह ने हफ्ते के दिन कारोबार करने से और मछलियां पकड़ने से मना किया। हालांकि मछलियां कोई बजाते खुद हराम चीज नहीं है, लेकिन अल्लाह अगर हलाल को भी हराम कह दे तो मेरा और आपका काम तो अल्लाह की फरमाबरदारी करना है, ना कि हुज्जतें तलाश करना, दलीलें ढूंढना या हीले बहाने ढूंढना। और बहरहाल इंसान की फितरत है कि जिस चीज से रोक दिया जाता है उसकी ख्वाहिश और बढ़ जाती है, और ये बहुत बड़ी आजमाइश है जिंदगी में। किसी भी मोड़ पर, किसी भी मरहले पर हराम के मौकों का खुलकर सामने आना, बार बार सामने आना अल्लाह की आजमाइश है। अल्लाह हमें इस आजमाइश में दीन पर कायम रहने वाला बना दे। ये इसलिए होता था कि हम उनकी नाफरमानियों की वजह से इनको आजमाइश में डाल रहे थे, तो पता क्या चला कि जब नाफरमानी होती है तो अल्लाह ताला आजमाते हैं। और इन्हें ये भी याद दिलाओ कि जब उनमें से एक ग्रोह ने दूसरे ग्रोह से कहा था कि तुम ऐसे लोगों को क्यों नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह हलाक करने वाला या सख्त सजा देने वाला है, तो उन्होंने जवाब दिया कि हम ये सब कुछ तुम्हारे रब के हजूर अपनी माजरत पेश करने के लिए करते हैं, और इस उम्मीद पर करते हैं कि शायद ये लोग इसकी नाफरमानी से परहेज करने लगे। जरूर रुक कर यहाँ पर सोच ले कि हमने क्यों काम करना है जब हमसे लोग कहते हैं कि दीन तो प्राइवेट मामला है, मजहब के बारे में बात ना करें, अपने काम से काम रखें, हम अल्लाह अल्लाह करते हैं, हमें दूसरों को कहने की जरूरत नहीं। तो ये जवाब यहाँ पर सोच लीजिए, कालू माजिरतन इला रब्बिकुम, ताकि हम अपने रब के आगे माजरत पेश कर सकें। वला अल्लाहुम यत्तकून, और ये भी हो सकता है कि ये लोग नाफरमानी से बच जाए। हम ये नहीं कहते कि हम पूरी दुनिया में इस्लाम गालिब कर देंगे, लेकिन ये तो हो सकता है कि कुछ लोगों की जिंदगियों में इस्लाम गालिब आ जाए, कुछ लोग अल्लाह के रस्ते पे चल पड़े, कुछ लोग जहन्नम के अजाब से बच जाएं। आखिरकार जब उन हदायात को बिल्कुल ही फरामोश कर गए जो उन्हें याद कराई गई थी, तो हमने उन लोगों को बचा लिया जो बुराई से रोकते थे, और बाकी सब लोगों को जो जालिम थे उनकी नाफरमानियों पर सख्त अजाब में पकड़ लिया। इस बस्ती पर जब अल्लाह का अजाब आया तो हमें कुरान क्या बता रहा है कि इन तीन ग्रोहों में, यानी एक ग्रोह वो था जो धड़ल्ले से अहकाम इलाही की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, दूसरा वो था जो खुद खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे थे मगर इस खिलाफ वर्जी पर खामोशी के साथ बैठे देख रहे थे, और तीसरा वो जिनकी गैरत ईमानी उन्हें ना ये खुद गुनाह करने देती थी और ना ही अल्लाह के हुक्मों की बेहुर्मती को बर्दाश्त कर सकती थी, लिहाजा वो नेकी का हुक्म देते और बदी से रोकते थे। तो बस यही एक तबका अल्लाह के अजाब से बच सका, यही कायदा आज भी है। अल्लाह के अजाब से बचना है दुनिया की जिंदगी में या आखरत की जिंदगी में, तो इस काम को करना होगा। सिर्फ खुद नेकी पर जमना नहीं बल्कि दूसरों को भी दावत देनी है। हक नेकी है, दोहरी दोहरी खिदमतें तेरे सुपुर्द, खुद तड़पना ही नहीं औरों को तड़पाना भी है। सिर्फ मेरा अल्लाह अल्लाह करना मुझे निजात नहीं दे सकता। और आज इस उम्मत का सबसे बड़ा फितना यही है कि उन्होंने मुसल्ला और तस्बीह संभाल ली लेकिन ये चीज उनकी डिक्शनरी से ही निकल गई कि हमने किसी को भी नेकी का हुक्म देना है और बुराई से मना करना है। बुराई को देखकर खामोश रहना गोया गूंगा शैतान होना है। फिर जब वो पूरी सरकशी के साथ वही काम किए चले गए जिससे इन्हें रोका गया था तो हमने कहा बंदर बन जाओ, उन्होंने अल्लाह के हुक्म को बदला, अल्लाह ताला ने उनकी शक्लें बदल दी, जलील और ख्वार। और याद करो जबकि तुम्हारे रब ने ऐलान कर दिया कि वो कयामत तक बराबर ऐसे लोग बनी इसराइल पर मुसल्लत करता रहेगा जो इनको बदतरीन अजाब देंगे, यकीनन तुम्हारा रब सजा देने में तेज दस्त है और यकीनन वो दरगुजर और रहम से भी काम लेने वाला है। हमने उनको जमीन में टुकड़े टुकड़े करके बहुत सी कौमों में तकसीम कर दिया, कुछ लोग इनमें नेक थे और कुछ इससे मुख्तलिफ, और हम इनको अच्छे और बुरे हालात से आजमाइश में मुब्तला करते रहे। लअल्लहुम यरजिऊन, आज ही के सबक में ये तीसरी जगह है कि अल्लाह ताला बता रहे हैं कि आजमाइश क्यों आती है। सबसे पहला मौका हमने देखा था लअल्लहुम यतदर्रउन, ताकि वो आजी अख्तियार करें। फिर हमने पढ़ा लअल्लहुम यज़्ज़क्करून, ताकि वो नसीहत हासिल करें। और इस वक्त हम पढ़ रहे हैं लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि वो पलट आए। फिर अगली नस्लों के बाद ऐसे नाखलफ लोग उनके जानशीन हुए जो किताब इलाही के वारिस होकर इसी दुनियादनी के फायदे समेटते हैं और कह देते हैं कि तवक्को है हमें माफ कर दिया जाएगा, और अगर वही मताए दुनिया फिर सामने आती है तो फिर लपक कर उसे ले लेते हैं। यानी तौबा ताए तो बहुत करते हैं लेकिन फिर जब बुराई का मौका सामने आए तो उसे लपक कर कर लेते हैं। क्या इनसे किताब का अहद नहीं लिया जा चुका कि अल्लाह के नाम पर वही बात कहें जो हक हो, और ये खुद पढ़ चुके हैं जो किताब में लिखा है, आखिरत की क्यामगा तो खुदा तर्स लोगों ही के लिए बेहतर है। क्या तुम इतनी सी बात नहीं समझते? जो लोग किताब की पाबंदी करते हैं और जिन्होंने नमाज कायम रखी है, यकीनन ऐसे नेक किरदार लोगों का अजर हम जाया नहीं करेंगे। इन्हें वो वक्त भी कुछ याद है जबकि हमने पहाड़ को हिलाकर इन पर इस तरह छा दिया गोया वो छतरी है, और ये गुमान कर रहे थे कि वो इन पर आ पड़ेगा, और उस वक्त हमने इनसे कहा था जो किताब हम तुम्हें दे रहे हैं इसे मजबूती से थामो और जो कुछ इसमें लिखा है इसे याद रखो, तवक्को है कि तुम गलत रवि से बचे रहोगे। और ऐ नबी, लोगों को याद दिलाओ वो वक्त जबकि तुम्हारे रब ने बनी आदम की पुश्तों से इनकी नस्ल को निकाला था और इन्हें खुद इन पर गवाह बनाते हुए पूछा था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? कालू बला, उन सब ने कहा था क्यों नहीं, शहीदना, हम गवाही देते हैं, ये वादा है जो हमने अल्लाह से किया है। अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि तुम्हारे इस दुनिया में भेजने से पहले सारी रूहों को जमा करके हमने उनसे वादा लिया था और उसमें मैं और आप भी शामिल थे। इसी अहद की वजह से हजरत ईसा ने बचपन में कहा था इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, और ये चीज फितरत में है, खुदा की पहचान मेरी और आपकी इंसानों की फितरत में है। और हदायत के जो चार जराए हैं, पहला जरिया फितरत है कि फितरत में रब की पहचान रखी है, दूसरा जरिया अकल है कि इंसान अकल से पहचानता है कि अल्लाह एक है, फिर कायनात हमें बताती है ये तीसरा जरिया है, इसका डिसिप्लिन, इसमें टीम वर्क हमें ये बताता है कि ये एक ही रब की बनाई हुई कायनात है, और चौथा हदायत का जरिया वही है। तो ये फितरत के अंदर है, और कोई कहे कि हमें तो याद ही नहीं कि हमने ये गवाही दी थी, तो अगर ये वादा उसी तरह याद होता जिस तरह से कि हुआ था कि अल्लाह ताला हमारे सामने मौजूद थे और वादा हमसे ले रहे थे और हम अल्लाह के सामने इस बात का इकरार कर रहे थे, अगर ये वादा एज इट इज याद होता तो इम्तिहान का तो मकसद ही फोत हो जाता। ये चीज हमारे तहत शऊर में है, और इसी तहत शऊर को उभारने के लिए तो अंबिया आए, किताबें आईं, वो हम एतमाद करते हैं बहुत सारी चीजों के मामले पर लोगों पर। क्या हमें याद है कि जिस दिन हम पैदा हुए थे, हम जिसको माँ कहते हैं, जिसको बाप कहते हैं, क्या वाकई यही हमारी माँ और हमारा बाप है? हमने कैसे कहा कि हमें लोगों ने बताया, और बच्चा पैदा होता है और डॉक्टर या नर्स आके बताती है माँ को या बाप को कि ये आपका बच्चा है, उसे तो नहीं पता होता, लेकिन वो उस नर्स पर और डॉक्टर पर एतमाद करती है। हम डॉक्टर पर, नर्स पर, लोगों पर तो एतमाद करें और रब की बात पर शक करें माज अल्लाह, तो हम रब की बात पर इसी तरह यकीन करते हैं, उससे भी कहीं बढ़ कर यकीन करते हैं, जिस तरह हम किसी दुनिया वाले पर यकीन करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है, लेकिन उसके माँ बाप उसे यहूदी, नसरानी या मजूसी बना देते हैं। हम देखें कि अगर हमने बचपन में अपने घर में गुर्बत देखी हो, तो हम क्या ये कहेंगे कि बस गुर्बत ही पर ही रहना है, चूंकि बचपन से हमने अपने घर में गुर्बत देखी है? अगर बचपन से हमने अपने घरों में गुमराही देखी है, तो ये फितरत की पुकार है, अल्लाह की तलाश, रब की तलाश। और अल्लाह हर एक की जिंदगी में हदायत का मौका देता है, रब की तरफ आने का रास्ता दिखाता है। अल्लाह हमें इस मौके से फायदा उठाने वाला बना दे। ये हमने इसलिए किया कि कहीं तुम कयामत के रोज ये ना कह दो कि हम तो इस बात से बेखबर थे, या ये ना कह दो कि शिर्क की इब्तदा तो हमारे बाप दादा ने हमसे पहले की थी और हम बाद को इनकी नस्ल से पैदा हुए। फिर क्या आप हमें उस कसूर में पकड़ते हैं जो गलत कार लोगों ने किया था? देखो, इस तरह हम निशानियां वाजे तौर पर पेश करते हैं और इसलिए करते हैं कि ये लोग पलट आए। और ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके सामने उस शख्स का हाल बयान करो जिसको हमने अपनी आयात का इल्म अता किया था, मगर वो इनकी पाबंदी से निकल भागा। यहाँ गौर कीजिएगा इस मिसाल में कि जिसको इल्म दिया, अल्लाह मुझे भी इल्म दे रहा है ना, आपको भी दे रहा है, मगर इसकी पाबंदी से नहीं भागना। और कोई ये ना समझे ये आयतें पढ़ के कि अच्छा फिर तो हम इल्म ही नहीं सीखते, कि हमें पाबंदी करनी पड़ेगी, हमें जिम्मेदारियां अदा करनी पड़ेंगी। तो कुरान में आपने कहाँ पढ़ा है कि जो नहीं सुनेंगे, जो इल्म नहीं सीखेंगे, वो जन्नत में जाएंगे? ये तो फिर और ज्यादा सजा को सख्त करने वाली बात है कि इल्म को हासिल ही नहीं किया। ये दुआ करें, अल्लाह जो इल्म दे उस पर अमल करने वाला बनाए। इमाम मुजाहिद कहते हैं, यहाँ उस शख्स की मिसाल है जो कुरान पढ़ता है मगर अमल नहीं करता, आखिरकार शैतान उसके पीछे पड़ गया, यहाँ तक कि वो भटकने वालों में शामिल हो रहा। अगर हम चाहते तो उसे उन आयतों के जरिए बुलंदी अता करते, मगर वो तो जमीनी की तरफ झुक गया। यानी ये आयतें तो हमें उरूज देने आई थी, हमें इज्जत देने आई थी, हमें इमाम और पेशवा बनाने आई थी, अगर हम इन आयतों पर अमल करते, मगर जमीन की तरफ झुक गए से मुराद क्या है? बस दुनिया, दुनिया की शोहरत, दुनिया का मफाद, बस नफ्स की ख्वाहिशात और अपनी ख्वाहिश नफ्स ही के पीछे पड़ा रहा। लिहाजा उसकी हालत कुत्ते की सी हो गई कि तुम इस पर हमला करो तब भी जुबान लटकाए रहे, और इसे छोड़ दो तब भी जुबान लटकाए रहे। यही मिसाल है उन लोगों की जो हमारी आयात को झुठलाते हैं। यानी ये जो हालत बताई अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला ने इस हालत को कुत्ते से तशबीह दी है। कुत्ता क्या करता है? चलते फिरते उसकी नाक जमीन सूंघने में ही लगी रहती है, शायद कहीं से कोई हड्डी, कोई खाने की बू आ जाए, इसे पत्थर भी मारे तब भी उसको ये तवक्को होती है कि ये जो चीज फेंकी गई है ये कोई हड्डी है या रोटी का टुकड़ा है, और एकदम उसको लपक के पकड़ लेता है। सारी दुनिया को बस वो पेट ही की नजर से देखता है, और इस पेट से बढ़कर अगर उसको कोई और चीज अजीज है तो बस अपनी शर्मगाह ही, वो उसके जिस्म का एक ऐसा हिस्सा है जिसके साथ उसको दिलचस्पी है। और आज हम अपने मीडिया का हाल देख ले, आज जो मीडिया मुझे और आपको सिखा रहा है और हमारी नस्लों को सिखा रहा है, हर बेशुमार कुकिंग चैनल्स और या फिर रोमांस, ये दो ही चीजें हमें मीडिया सिखा रहा है। तो ये वो कल्चर है जिससे बचने की जरूरत है। फन, मौज, मस्ती के लिए हम इस दुनिया में नहीं आए हैं, हम इस दुनिया में अल्लाह का खलीफा बनकर आए हैं, और अल्लाह ताला अपने दीन पर चलने वालों को दुनिया की भी तरक्की देता है, दुनिया की भी नेमतों से नवाजता है। यहाँ अल्लाह ताला ने नाम नहीं लिया शख्स का और उसके किरदार का जिक्र किया। इससे हमें ये भी सीखने को मिलता है कि हमें गीबत नहीं करनी, और कोई माशरे में अगर कोई बुराई है, किसी की कोई बुराई है और हमने लोगों को आगाह करना है, तो नाम लिए बगैर भी बताया जा सकता है कि ये माशरे में लोगों को क्या हो गया है, वो ऐसा करते हैं, ताकि लोग समझ जाएं। अल्लाह हमें जो हम इल्म हासिल करें उस पर अमल करने वाला बना दे। रब्बना ला तुज़िग़ कुलूबना बाद इज़ हदैतना, हदायत के बाद परवरदिगार तो हमें गुमराह ना करना। कभी भी इल्म पर, इबादत पर नाज ना हो, शुक्र करने वाले हों, जो इल्म मिले, जो नेकी की तौफीक मिले उस पर शुक्र करें, अल्लाह से इस्तकामत की दुआ करें, और ऐसे हर मौके से, ऐसी हर जगह से जहां ईमान को खतरा हो वहां ना जाएं। तुम ये हिकायात इनको सुनाते रहो, शायद कि ये गौर व फिक्र करें। बड़ी ही बुरी मिसाल है ऐसे लोगों की जिन्होंने हमारी आयात को झुठलाया। वो आप अपने ही ऊपर जुल्म करते रहे। जिसे अल्लाह हदायत बख्शे बस वही राह रास्त पाता है, और जिसको अल्लाह अपनी रहनुमाई से महरूम कर दे वही नाकाम और नामुराद रहता है। हदायत का सोर्स सिर्फ रब की जात है। रब से मांगे, रब से तलब करें, और हदायत देना अल्लाह का तो इतना पसंदीदा मशगला है कि आप देखें 1450 साल से अल्लाह ताला ने मेरी और आपकी हदायत के लिए ये किताब संभाल संभाल के रखी है। और ये हकीकत है कि बहुत से जिन और इंसान ऐसे हैं जिनको हमने जहन्नम ही के लिए पैदा किया है। इनके पास दिल है मगर वो इनसे सोचते नहीं, इनके पास आंखें हैं मगर वो इनसे देखते नहीं, इनके पास कान है मगर वो इनसे सुनते नहीं। वो जानवरों की तरह है, बल्कि उनसे भी गए गुजरे। ये वो लोग हैं जो गफलत में खोए गए। मैं अपना जायजा लूं, कहीं ये मेरा जिक्र तो नहीं है। कान है मगर नसीहत की बात नहीं सुनते, आंखें हैं मगर हक नजर नहीं आता, दिल है, बहुत सारे ख्याली पुलाव पकते हैं मगर अल्लाह के दीन के लिए कोई प्लान, दीन पर चलने के लिए कोई राह नहीं सूझती। अल्लाह ने इंसान को अक्ल दी है फिर भी रब की नाफरमानी करता है। जानवर को तो अक्ल नहीं दी, जानवर फिर भी अपने मालिक का वफादार है, और इंसान अपने रब की हुक्म अदूली करता है। जानवरों से भी गए गुजरे। अल्लाह अच्छे नामों का मुस्तहिक है, इसको अच्छे ही नामों से पुकारो। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदउहू बिहा, और उन लोगों को छोड़ दो जो इसके नाम रखने में रास्ते से मुनहरिफ हो जाते हैं। जो कुछ वो करते हैं उसका बदला वो पाकर रहेंगे। ये आयत नंबर 180 है। प्यारे नबी फरमाते हैं, खुदा के 99 एक कम पूरे 100 नाम है, जो शख्स इनको महफूज कर लेगा जन्नत में दाखिल होगा। और नाम महफूज करने से क्या मुराद है, यानी एक याद कर लेना, अल्लाह की सिफात का पता होना, एहसास होना, और उन पर ईमान लाना, इखलास के साथ उनके नामों को पढ़ना, और अपने आप को उन सिफात से मुत्तसिफ करना। मसलन अल्लाह रहीम है, हम भी रहम करने वाले बने। वो अल आफू है, हम भी अफू दरगुजर से काम लें। हमारी मखलूक में एक ग्रोह ऐसा भी है जो ठीक ठीक हक के मुताबिक हदायत और हक ही के मुताबिक इंसाफ करता है। रहे वो लोग जिन्होंने हमारी आयात को झुटला दिया है, तो इन्हें हम बतदरीज ऐसे तरीके से तबाही की तरफ ले जाएंगे कि इन्हें खबर तक ना होगी। मैं इनको ढील दे रहा हूँ, मेरी चाल का कोई तोड़ नहीं। अगर गलत कामों पे पकड़ नहीं होती तो डरना चाहिए। प्यारे नबी फरमाते हैं, बेशक अल्लाह जालिम को मोहलत देता है, यहाँ तक कि जब उसे पकड़ता है तो भाग कर जाने नहीं देता। ये बुखारी की हदीस है। और क्या इन लोगों ने कभी सोचा नहीं कि इनके रफीक पर जुनून का कोई असर नहीं है? वो तो एक खबरदार है जो बुरा अंजाम सामने आने से पहले साफ साफ मुतनब्बे कर रहा है। क्या इन लोगों ने आसमान और जमीन के इंतजाम पर कभी गौर नहीं किया, और किसी चीज को भी जो खुदा ने पैदा की है आंखें खोल कर नहीं देखा? और क्या ये भी इन्होंने नहीं सोचा कि शायद इनकी मोहलत जिंदगी पूरी होने का वक्त करीब आ लगा हो? फिर आखिर पैगंबर की इस तंबीह के बाद और कौन सी बात ऐसी हो सकती है जिस पर ये ईमान लाए? जिसको अल्लाह रहनुमाई से महरूम कर दे उसके लिए फिर कोई रहनुमा नहीं, और अल्लाह इन्हें इनकी सरकशी ही में भटकता हुआ छोड़े देता है। ये लोग तुमसे पूछते हैं, आखिर वो घड़ी कयामत की कब नाजिल होगी? कहो, इसका इल्म मेरे रब ही के पास है, उसे अपने वक्त पर वही जाहिर करेगा। आसमानों और जमीन में वो बड़ा सख्त वक्त होगा, वो अचानक तुम पर आ जाएगा, लम्हे भर में कयामत आ जाएगी। प्यारे नबी फरमाते हैं, कयामत यूं अचानक वाकई होगी कि दो आदमियों ने अपने दरमियान कपड़ा फैला रखा होगा, और वो इसकी खरीदो फरोख्त न कर सकेंगे, न इसे लपेट सकेंगे, और एक आदमी अपनी ऊंटनी का दूध दोह कर लौट रहा होगा मगर इसे न पी सकेगा, और एक आदमी नवाला मुंह की तरफ उठाएगा मगर वो इसे खा न सकेगा। ये बुखारी की हदीस है। अल्लाह ताला वार्निंग दे रहे हैं। ये लोग उसके मुतालिक तुमसे इस तरह पूछते हैं गोया के तुम उसकी खोज में लगे हुए हो। कहो, इसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह को है, मगर अक्सर लोग इस हकीकत से नावाकिफ हैं। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो कि मैं अपनी जात के लिए किसी नफे और नुकसान का इख्तियार नहीं रखता। अल्लाह ही जो कुछ चाहता है वो होता है, और अगर मुझे गैब का इल्म होता तो मैं बहुत से फायदे अपने लिए हासिल कर लेता, और मुझे कभी कोई नुकसान ना पहुंचता। मैं तो महज एक खबरदार करने वाला और खुशखबरी सुनाने वाला हूँ उन लोगों के लिए जो मेरी बात माने। वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और इसी की जिन से इसका जोड़ा बनाया, ताकि उसके पास सुकून हासिल करे। यानी बीवी का तज़करा है कि बीवी शोहर के लिए सुकून का जरिया है, खुशनुमा लगेगी, आंखों को सुकून मिलेगा, खाना देगी, मेदे को सुकून देगी, जरूरत पूरी करेगी, जज्बात को सुकून देगी। हजरत उम्मे सलमा से मरवी है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर औरत जो इस हाल में फौत हो कि उसका खावंद इससे राजी हो, वो जन्नत में जाएगी। ये तिरमिजी की हदीस है। अल्लाह हमें भी इन्हीं औरतों में से कर दे। फिर जब मर्द ने औरत को ढांक लिया तो उसे एक खफीफ सा हमल रह गया, जिसे लिए लिए वो चलती फिरती रही। फिर जब वो बोझल हो गई तो दोनों ने मिलकर अल्लाह अपने रब से दुआ की, अगर तूने हमें अच्छा सा बच्चा दिया तो हम तेरे शुक्र गुजार होंगे, मगर जब अल्लाह ने इनको सही सालिम बच्चा दे दिया तो वो इसकी बख्शिश और इनायत में दूसरों को इसका शरीक ठहराने लगे। फला मजार पे गई थी, ये मन्नत मानी थी, ये फलां डॉक्टर के पास गई थी तो मुझे औलाद हुई। अल्लाह बहुत बुलंद और बरतर है इन मुशरिकाना बातों से जो ये लोग करते हैं। कैसे नादान हैं ये लोग कि उनको खुदा का शरीक ठहराते हैं, जो किसी चीज को भी पैदा नहीं करते बल्कि खुद पैदा किए जाते हैं, जो ना इनकी मदद कर सकते हैं और ना आप ही मदद पर कादिर हैं। यानी वो इलाह नहीं हो सकते जो मोहताज हो, और वो भी इलाह नहीं हो सकते जो किसी की मदद ना कर सके, जो पुकार ना सुन सके। अगर तुम इन्हें सीधी राह पर आने की दावत दो तो वो तुम्हारे पीछे ना आए। तुम ख्वाह इन्हें पुकारो या खामोश रहो, दोनों सूरतों में तुम्हारे लिए यकसा ही है। यहाँ मौलाना साहब कहते हैं तफसीर में कि ये अरब के मुशरिकीन थे और इनका कसूर क्या था कि सही सालम औलाद पैदा होने के लिए अल्लाह ही से दुआएं मांगते थे, मगर जब बच्चा पैदा हो जाता था तो अल्लाह की सतीये में दूसरों को शरीक ठहराते थे। ये हालत भी नहायत बुरी। लेकिन जो आज हमारे मुसलमानों का हाल है, ये जालिम तो औलाद भी गैरों ही से मांगते हैं। हमल के जमाने में मन्नतें भी गैरों ही के नाम की मानते हैं, और बच्चा पैदा होने के बाद न्याज भी उन्हीं के आस्तानों पर चढ़ाते हैं। और इस पर वो तो जमाना जाहिलियत के अरब मुशरिक थे, और ये मुआहिद हैं, उनके लिए जहन्नम वाजिब थी और इनके लिए निजात की गारंटी। हाल ही ने कहा है, करे गैर घर बुत की पूजा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, झुके आग पर बहर सजदा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करें शौक से जिसकी चाहें, नबी को जो चाहें खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, मिजारों पे जा जा के नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, ना तौहीद में कुछ खलल इससे आए, ना इस्लाम बिगड़े ना ईमान जाए। अल्लाह हमें शिर्क से बचा ले। तुम लोग खुदा को छोड़कर जिन्हें पुकारते हो वो तो महज बंदे हैं, जैसे तुम बंदे हो। इनसे दुआएं मांग देखो, ये तुम्हारी दुआओं का जवाब दें। अगर इनके बारे में तुम्हारे ख्याल सही हैं, क्या ये पांव रखते हैं कि इनसे चले? क्या ये हाथ रखते हैं कि इनसे पकड़े? क्या ये आंखें रखते हैं कि इनसे देखें? क्या ये कान रखते हैं कि इनसे सुने? ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो कि बुला लो अपने ठहराए हुए शरीकों को, फिर तुम सब मिलकर मेरे खिलाफ तदबीरें करो और मुझे हरगिज मोहलत ना दो। मेरा हामी और नासिर वो खुदा है जिसने ये किताब नाजिल की, और वो नेक आदमियों की हमायत करता है। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने अंदर। बखलाफ इसके तुम जिन्हें खुदा को छोड़कर पुकारते हो वो ना तुम्हारी मदद कर सकते हैं, ना खुद अपनी ही मदद करने के काबिल हैं। बल्कि अगर तुम इन्हें सीधी राह पर आने के लिए कहो तो वो तुम्हारी बात सुन भी नहीं सकते। बज़ाहिर तुमको ऐसा लगता है कि वो तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, मगर फिल वाकई वो कुछ भी नहीं देखते। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नरमी और दरगुजर का तरीका इख्तियार करो, मारूफ की तलकीन किए जाओ, जाहिलों से ना उलझो। अगर कभी शैतान तुम्हें उकसाए तो अल्लाह की पनाह मांग लो, वो सब कुछ सुनने और जानने वाला है। यहाँ दावत देने का तरीका, मोमिन का रवैया बताया, क्या करना है? नरमी, लोगों से नरमी से बात करनी है। प्यारे नबी फरमाते हैं, जब अल्लाह किसी घराने से भलाई का इरादा करता है तो इनमें नरमी डाल देता है, और जब किसी घराने से बुराई का इरादा करता है तो वहां सख्ती डाल देता है, नरमी छीन लेता है। अल्लाह हमें नरमी अता फरमाए। दूसरी चीज दरगुजर। नरमी और दरगुजर दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, दीन और हक की बात कहना गोया निश्तर चलाना है, मगर नरमी इस पर मरहम रखती है। और इब्लीस कहता है कि जब किसी बंदे में सख्ती हो तो हम उसे इस तरह लुढ़काते हैं जिस तरह बच्चा गेंद को लुढ़काता है। यानी फिर वो इस तरह शैतान के कहने पे चलता है। मारूफ की तलकीन किए जाओ, बस लोगों के रवैये से बददिल ना हो, अपना रास्ता नहीं छोड़ना, लोगों को नेकी की तरफ बुलाते जाओ, जाहिलों से ना उलझो, जो बहस करे जो ना माने उससे हट जाओ, और अगर कभी शैतान तुम्हें उकसाए तो अल्लाह की पनाह मांगो, वो सब कुछ सुनने और जानने वाला है। हकीकत में जो लोग मुत्तकी हैं उनका हाल तो ये होता है, कभी शैतान के असर से कोई बुरा ख्याल अगर इन्हें छू भी जाता है तो फौरन चौकन्ने हो जाते हैं, फिर इन्हें साफ नजर आने लगता है कि इनके लिए सही तरीके कार क्या है। रहे उनके शयातीन भाई बंद तो वो इन्हें इनकी कजरवी में खींचे लिए जाते हैं और इन्हें भटकाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम इन लोगों के सामने कोई निशानी यानी मौजजा पेश नहीं करते तो ये कहते हैं कि तुमने अपने लिए कोई निशानी क्यों ना इंतखाब कर ली। इनसे कहो, मैं तो सिर्फ उस वही की पैरवी करता हूँ जो मेरे रब ने मेरी तरफ भेजी है, ये बसीरत की रोशनियां हैं तुम्हारे रब की तरफ से, अल्लाह हमें भी इस रोशनी से फायदा उठाने वाला बना दे, और हदायत और रहमत अल्लाह हमें इसका हकदार बना दे उन लोगों के लिए जो इसे कबूल करें। परवरदगार हम इसे कबूल करते हैं। जब कुरान तुम्हारे सामने पढ़ा जाए तो उसे तवज्जो से सुनो और खामोश रहो, शायद कि तुम पर भी रहमत हो जाए। हमें अल्लाह की रहमत चाहिए, अल्लाह का फजल चाहिए। अल्लाह ने कायदा बता दिया कि कुरान को गौर से फस्तमेउ लहू वंसितु, ऐसा ना हो कि कुरान का लेक्चर सुन रहे हो साथ साथ व्हाट्सएप पे मैसेजेस चेक हो रहे हैं, साथ साथ सोशल मीडिया पे लाइक और डिसलाइक और पोस्ट जो है वो शेयर की जा रही हैं, या और कुछ चैटिंग हो रही है या फिर काम हो रहे हैं। तो बहरहाल कुरान से फायदा उठाना है तो एहतराम से, तवज्जो से, यकसुई के साथ बैठेंगे तो हम इससे कुछ हासिल कर पाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स कान लगाकर अल्लाह की किताब की किसी आयत को सुने तो इसके लिए कसरत से भरने वाली नेकी लिखी जाती है, और अगर इसे पढ़े, गौर से इसको पढ़े, तो इसके लिए क्यामत के दिन नूर होगा। ये मसनद अहमद की रिवायत है, हदीस है। तो बहरहाल अल्लाह हमें तौफीक दे, अल्लाह हमारे वक्त में बरकत दे कि हम गौर से तवज्जो से बैठ के कुरान को सुने। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने रब को सुबह शाम याद करो, यानी हर वक्त अल्लाह की याद में रहे दिल ही दिल में, और अल्लाह की याद वो किला है जो हमें शैतान के वार से बचाती है। जब कुत्ता हमलावर होता है ना तो हम कहते हैं दुर दुर, और शैतान के हमले का दुर दुर क्या है? अल्लाह का जिक्र। अल्लाह का जिक्र करें तो शैतान पीछे हट जाता है। दिल ही दिल में जारी और खौफ के साथ और जुबान से भी हल्की आवाज के साथ तुम इन लोगों में से ना हो जाओ जो गफलत में पड़े हुए हैं। जो फरिश्ते तुम्हारे रब के हजूर तकर्रुब का मकाम रखते हैं वो कभी अपनी बड़ाई के घमंड में आकर इबादत से मुंह नहीं मोड़ते, उसकी तस्बीह करते हैं और उसके आगे झुके रहते हैं। यहाँ ये वो पहला मुकाम है जहाँ पर सजदे की आयत आई है। तो बहरहाल यहाँ सजदे की आयत के हवाले से थोड़ी सी बात कर लें कि जमहूर उलमा यही कहते हैं कि जो नमाज की शर्तें हैं यानी बावजू होना, क़िबला रुख होना और नमाज की तरह सजदे में जमीन पे सर रखना, ये सजदे तिलावत की शरायत है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसा औकात एक बड़े मजमे में कुरान पढ़ते और इसमें जब आयत सजदा आती तो आप खुद भी सजदे में गिर जाते, और जो शख्स जहाँ होता वहीं सजदा रेज हो जाता, हत्ता कि किसी को सजदा करने के लिए जगह ना मिलती तो वो अपने आगे वाले शख्स की पीठ पर सर रख देता। अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इब्ने आदम सजदे की आयत पढ़ता है और सजदा करता है तो शैतान रोते हुए अलग हो जाता है और कहता है मेरी बर्बादी, इब्ने आदम को सजदे का हुक्म मिला तो इसने सजदा किया और इसके लिए जन्नत है, और मुझे हुक्म मिला तो मैंने इनकार किया और मेरे लिए दोजख है। ये मुस्लिम की हदीस है। हमें अल्लाह ताला सजदे करने वाला, अपने हुक्मों के आगे झुकने वाला बना दे।